आप SBS हिंदी सुन रहे हैं। हर शाम हमारा कार्यक्रम अपनी रेडियो पर लाइव सुने। आप जब चाहे तब हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, SBS हिंदी के माध्यम से हम आपको नए आए प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की समस्याओं के बारे में बताते रहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं उस्मान चौहान, जो कि कैनबरा स्थित नीति विशेषज्ञ हैं। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया अमित जी।
उस्मान जी, हमने आपसे पिछले कई अंकों में ये बात की है कि किस प्रकार से नए आए प्रवासियों को यहाँ नौकरी पाने में दिक्कत होती है, जिस समस्या की जड़ें यहाँ की शिक्षा प्रणाली और नीति में है। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कई बार नए आए प्रवासियों के पास बेहतर शिक्षा के साथ साथ, बेहतर डिग्रियों के साथ साथ कई वर्षों का महत्वपूर्ण अनुभव भी होता है, पर फिर भी उनकी डिग्रीज को, उनकी शिक्षा को यहाँ रिकॉग्निशन नहीं मिलता। इसके क्या कारण हो सकते हैं?
बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला होता है इमिग्रेंट्स को कि वो आते हैं बहुत पढ़ पुढ़ के और ट्रेनिंग के साथ भी, और उन्हें अपने शोबे के बारे में बहुत इलम भी होता है और तजर्बा भी होता है, लेकिन यहाँ उनके तजर्बे को माना नहीं जाता। लिहाजा उनको या तो किसी लोअर, किसी कम दर्जे पे काम शुरू करना पड़ता है, या फिर वो बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि उनकी डिग्री को कहीं ना कहीं तस्लीम किया जाए। तो इसमें जो है इनका इतना मसला नहीं होता जितना सिस्टम का होता है, क्योंकि आप बाहर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ पर वो आके आपको कहते हैं कि आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अभी पहुंचे थे और आप एक जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इधर का तो वो आपको जॉब नहीं देंगे, और अगर आपको जॉब नहीं होगी तो आप यहाँ की एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। और इस जाल में फंसते फंसते कई सारे बेशुमार, मैं आपको कहूंगा कि गालबन 20-30% तक किसी साल में इमिग्रेंट्स, खासतौर पे जो हमारे इलाकों से आते हैं, वो इस जाल में फंसे हुए होते हैं। और शुरू में पहले 5 सालों में उनके इसके मनफी नेगेटिव असरात बहुत सख्त होते हैं।
जी उस्मान जी, ज्यादातर के सिनेरियोज में हम ये देखेंगे कि जो लोग प्रवास के लिए अप्लाई करते हैं वो बेहतर शिक्षा संस्थानों से निकल कर आते हैं, बेहतर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में ही काम कर रहे होते हैं, चाहे और मेट्रो सिटीज में ही काम कर रहे होते हैं, अगर आप बड़ा तबका लें माइग्रेंट्स का। लेकिन उसके साथ उनकी जब डिग्रीज की स्क्रीनिंग होती है, चाहे इंडस्ट्री लेवल पे कहें, तो कहीं जो यहाँ के व्यापारिक संस्थाएं हैं, इंडस्ट्री है, वो पीछे हट जाती है उनको सपोर्ट करने की जगह ऐसी डिग्रीज को, अपना पेपर वर्क बचाने के लिए। सही मानेंगे इसको?
जी, मैं इसको सही मानूंगा। ये मसला सख्त है, क्योंकि काफी सारे जो इमिग्रेंट्स आते हैं सब कॉन्टिनेंट से, उनके पास ट्रेनिंग होती है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में, जो कि यहाँ की मल्टीनेशनल से बड़ी होती हैं, और उन्होंने मिडिल ईस्ट, दुबई वगैरह में काम किया होता है या यूरोप में काम किया होता है, और फिर यहाँ आते हैं और उनको कहते हैं नहीं जी, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस में ऐसी क्या खसूसियत है जो कि यूरोप या मिडिल ईस्ट के टॉप मल्टीनेशनल्स में नहीं मिलती, ये मेरी समझ से बाहर है। और यही चीज एजुकेशन, तालीम पे भी आती है कि आपकी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं सब कॉन्टिनेंट की, उनका मयार और उनमें जो पढ़ाई होती है वो ज्यादा सख्त भी होती है और ज्यादा वसी होती है, वैस्ट होती है यहाँ के बनिस्बत। तो अगर ये आपको कहते हैं कि यहाँ की जरूरत है, तो मैं इस, ये मेरी अब समझ से बाहर हो चुकी है एक ग्लोबलाइज्ड निजाम में, जहाँ पर स्किल्स एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई भी होते हैं और ज्यादा फायदे भी होते हैं इसके।
इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या वजह हो सकती है कि इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है फॉरेन डिग्रीज को ज्यादातर?
इसमें उनके जाती मफाद, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा आ जाते हैं कि वो नहीं चाहते कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो उनसे आगे बढ़े वेजेस के सिलसिले में और एक्सपीरियंस और करियर के सिलसिले में। इसलिए उनकी जो यूनियंस होती हैं यहाँ पे या उनकी अपनी जो सोसाइटीज होती हैं प्रोफेशनल, वो चाहती हैं कि आप पहले थोड़ा सा रगड़ा खाएं, आप कोई 2-3 साल एक डिप्लोमा करें और एविंग जो है बैठे रहें इस पढ़ाई के चक्रों में, और उसके बाद ज्वाइन करें, उस वक्त तक उनकी ज्यादा उसमें पावर होगी नेगोशिएशन में। तो ये उनकी यूनियनाइजेशन की अपने आप को महफूज रखने के सिलसिले में ये इमिग्रेंट्स को पीछे रखते हैं इसमें।
उस्मान जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की यूनियन से जुड़ी हुई, वो है एजुकेशन डिप्लोमास की। अब एक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि न्यू माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, कि एक डिप्लोमा कर लो 6 महीने का। और ज्यादातर केस सिनेरियोज में ये डिप्लोमास बहुत महंगे होते हैं। अगर आप कभी भी बाहर निकलें और टेफ में या RTOs जो डिप्लोमास करा रहे हैं, काफी महंगे डिप्लोमास हैं और कई बार इनकी जरूरत नहीं होती है, नए आए प्रवासी को पर करना पड़ता है। इससे क्या इनकी एजुकेशन प्रणाली भी चल रही है, जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी चलाई जा रही है?
बिल्कुल, ये आपने एक बहुत अहम बात का जिक्र किया है कि ये एजुकेशन सिस्टम के लिए ज्यादा मुनाफा, ज्यादा प्रॉफिट आता है, क्योंकि वो आपको बिठा के पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन एक ये पढ़ाई अक्सर आपके वैसे ही तजर्बे से मुंसलिक थी, आपको वैसे ही ये चीजें आती थी और इन्होंने आपको बिठा दिया ताकि आप वर्कफोर्स में कमाए ना, उनकी जॉब्स ना लें और आप इनकी फीसें भरते रहे। तो जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो वैसे ही इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड होते हैं, उसकी वजह ये है कि उन्होंने काफी कुर्बानियां दी होती हैं, काफी चीजें अपने घर बार बेच के इधर आए हुए होते हैं और अब वो ज्यादा अखराजा, ज्यादा एक्सपेंडिचर्स कर रहे होते हैं सिर्फ इस इंतजार में कि यहाँ पे तस्लीम हो। तो ये किस्म का धंधा बन चुका है, खासतौर पर जैसे आपने कहा ये टेफ्स और ये 6 महीने के डिप्लोमा है इनके सिलसिले में।
जी, सरकारी स्तर पर, गवर्नमेंट लेवल पर नीति पे, पॉलिसी में क्या करेक्शंस ला सकते हैं या क्या खामियां, ऐसी क्या कमियां हैं जिन्हें दूर करना अभी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए?
बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है इस सिलसिले में वो काफी आवाजें सुन रही होती है और इसमें यूनियंस और इंडस्ट्रीज और एजुकेशन सिस्टम, इन सब की बहुत बड़ी आवाज होती है और ये गवर्नमेंट को कह रहे होते हैं कि आप इसी तरह ही चीजें रखें, कोई तब्दील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी फीसें इससे बढ़ती हैं, आखिर हमारा अब इतना बड़ा एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन ही है और एक्सपोर्ट इस सिलसिले में कि बाहर से लोग आके यहाँ पढ़ते हैं तो ये चलता रहे। और फिर ये स्किल्स जो है वो ये कहते हैं कि बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं और गवर्नमेंट खुशी से ये बात सुन रही होती है कि बाहर के लोगों को पता नहीं और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसमें जो आवाजें हैं वो ज्यादातर इधर के मफाद में है और इसलिए जो इमिग्रेंट आते हैं, डायनेमिक होते हैं, पढ़ पढ़ के आए हुए होते हैं और इतने मेहनती होते हैं, उनको अपनी ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। हम इस सियासी जो है बहस में नहीं पढ़ते, डरते हैं, लेकिन हमें अब डरना नहीं चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम जो आते हैं मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, टॉप डिग्री सब कुछ करके आए हैं, जो हम हैं हम बेहतर हैं और इन्होंने जो रुकावटें खड़ी की हुई हैं ये ऐवी खड़ी की हुई हैं हमें इस करियर के कॉम्पिटिशन में, इस सिलसिले में बाहर रखने के लिए।
उस्मान, चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो माहौल है विश्व का, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, या अपने इलाकों में पाकिस्तान और भारत में हमारी शिक्षा नीतियों को देखें, आपको लगता है कि आने वाले समय में रुख बदलेगा, यहाँ से लोग भारत पढ़ने जाएंगे या सिंगापुर पढ़ने आएंगे और वहाँ की यूनिवर्सिटीज वापस वो मुकाम ले पाएंगी?
जी, मेरे ख्याल से आज से 10 या 20 साल आगे जो है ना तो सिर्फ जॉब्स बेहतर होंगी एशियाई ममालिक में बल्कि तालीम भी बेहतर होगी इन्ही ममालिक में, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि एक रिवर्स माइग्रेशन होने शुरू होगी। तो यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आए एक जिंदगी बनाने, उन्होंने पसीना अपना खोया है इसमें है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो अक्सर ये सोचेंगे कि हम वापस एशिया क्यों नहीं जाते जहाँ से हमारे बाप दादा आए थे, क्योंकि वहाँ मौके बेहतर हो रहे हैं। और ये ट्रेंड आप खासतौर पर कई कम्युनिटीज में अभी देखते भी हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, UK में जो साउथ कोरियन कम्युनिटी है वो वापस अक्सर जाती है क्योंकि साउथ कोरिया आगे निकल चुका है और चाइना के साथ भी अक्सर ये होता है सेकेंड जनरेशन के साथ। अब इंडिया पाकिस्तान वगैरह की बारी आ रही है कि यहाँ से लोग जो है यहाँ कुर्बानी दे के आए थे, उन्होंने यहाँ घर बनाया, पर उनके बच्चे ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो हमारे बाप दादा के घर में ज्यादा हैं, तो वो सोचते भी हैं, कभी एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे चले जाते हैं, वही जुबानें सीखते हैं और ताल्लुकात बढ़ाने शुरू हो चुके हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है इसमें जो दुनिया के बेहतरीन वर्कर्स हैं जिसमें इंडियंस और पाकिस्तानीज भी शामिल हैं, जो टॉप परसेंटेज है वो अब सारी दुनिया को देखती है और जहां भी अच्छे मौके होंगे वो वहां चले जाएंगे और अब जो है बेहतर मौके इंडिया और दूसरे एशियाई ममालिक में नजर आते हैं, लिहाजा वो जहां भी उनको अच्छा मौका मिलेगा वो वहां जाएंगे। ये अब पुराना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का चक्कर नहीं रहा, इसमें अब सारी दुनिया आ गई है और जो अकलमंद इंडियंस और बाकी देसी हैं वो अब बेहतरीन मौके बाहर भी।
उस्मान, SBS हिंदी से बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत शुक्रिया अमित जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। पूरा कार्यक्रम कैसे सुने ये जानकारी के लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।